दोनों शब्दों में एसेंस भरा हुआ है, आत्मा की शक्ति भी भरी हुई है। जितना हमारे दिन में हम ऐसी ऐसी एक सेकंड की घड़ी लेंगे जिसमें अंदर से आवाज निकलता है ओम शांति, तो बिल्कुल वो शांति की शक्ति मन और बुद्धि को स्थिर करती है। हम इंग्लिश में कहते हैं टेक ओम शांति मोमेंट्स इन द डे। ब्रह्मा कुमारीज में तो ओम शांति ग्रीटिंग के हिसाब से यूज करते हैं। जब भी कुछ ऐसे घटनाएं आती है उसको फुल स्टॉप करने के भी लिए हम ओम शांति बोलते हैं। वेस्टेज को बंद करने के लिए भी हम ओम शांति बोलते हैं। शक्ति है क्या? आज सुबह जब भी चिंतन चला तो हिंदी में काफी ऐसे शब्द आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही शब्द होता है पावर, और पावर जो शब्द है इट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। हिंदी में बल आता है, कहते हैं ना बाहुबल, वो है हमारा फिजिकल पावर, पावर ऑफ द बॉडी। फिर आती है ताकत, ताकत को हम कहेंगे इंग्लिश में स्ट्रेंथ, और ताकत बनती है अपनी कैरेक्टर के वैल्यूज के आधार से, दे से स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। फिर आती है एनर्जी, एनर्जी एक वाइब्रेशन होता है जो हमारी मानसिक स्थिति द्वारा पैदा होती है। तो अपने मन से आप पूछिए कि मेरे संकल्प मुझे एनर्जी देती है या मेरे संकल्पों से एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि माइंड से ही वाइब्रेशन पैदा होते हैं। इट्स लाइक अ सटल इंफॉर्मेशन फील्ड। जैसे मोबाइल से मोबाइल आप बात करते हो, वैसे ही वी कैन एक्चुअली टॉक माइंड टू माइंड, वाइब्रेशंस पिकअप होते हैं। तो द क्वालिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को एक अच्छी एनर्जी फील्ड आप अपने आप के लिए रखो, दिस इज सेल्फ केयर. आप अच्छा फ्रेश होकर के आए हैं, फिर आप पसंद करेंगे कि खुद को गंदा करें. इट्स द सेम विद योर माइंड. फिर आती है शक्ति. शक्ति उसका रूट मूल है, इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, सटल पावर. ये जो आत्मा परमात्मा के बीच में जो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज कम्युनिकेशन कनेक्शन रिलेशनशिप एम्पावर करती है हमको. इसको हम कहेंगे शक्ति. जब भी कोई खिलौना होता है, वो चाबी वाला खिलौना होता है ना, उसकी बैटरी फ्लैट होती है तो क्या करते हैं, चाबी लगाते हैं ना. गाड़ी की बैटरी फ्लैट होती है तो क्या करते हैं, जंप स्टार्ट करते हैं दूसरी गाड़ी से. अभी आत्मा की बैटरी थोड़ी फ्लैट है, तो शक्ति नहीं है हमारे पास या ताकत नहीं है जो हम खुद की मनसा मन और बुद्धि को ठीक रखे. तो राज योगा इज अ मेथड फॉर एम्पावरिंग द सेल्फ फर्स्ट, नॉट योर सिचुएशन, नॉट योर रिलेटिव्स, फॉर मी फर्स्ट. देखो आत्मा में हर एक चीज वास्तविक मां में नेचर के हिसाब से आप देखेंगे तो हर एक चीज की एक नेचुरल स्टेट होती है, ओरिजिनल स्टेट होती है. वो जब ओरिजिनलिटी से काम करती है तो एक यूनिकनेस दिखाई देता है, न्यारापन दिखाई देता है कि इसमें कुछ है. तो इन द सेम वे आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है वो शांति है. और वो शांति जब इस आत्मा इस शरीर में प्रवेश होती है और संबंध संपर्क में आती है तो वो शांति धैर्यता के रूप लेती है, एक शक्ति बनती है जो मन बुद्धि को धैर्य रख सकती है. दिस इज द प्रैक्टिकल फ्लो. इसलिए पावर को अपनाना है जीवन में. आपको भगवान से शक्ति लेनी है तो पहला अभ्यास है आपकी ओरिजिनल स्थिति का अभ्यास. यू नीड टू हैव डीप लव टू बिकम पीसफुल. और जब हम अंदर में हमारी जो ओरिजिनल स्थिति की खोज करेंगे, उसका अनुभूति करेंगे, तो एक्चुअली इन अ वेरी नेचुरल वे पावर्स कम. इट्स नॉट आर्टिफिशियल. जिसके पास पावर होता है ऑटोमेटिकली वो काम करता है, सोचने की जरूरत नहीं है इतनी. ज्यादा सोच चलाते हैं माना बैटरी लो है. शक्तियां तो भिन्न भिन्न रूप से होती है, सूक्ष्म हमारी शक्तियां. एक है शांति की शक्ति जो डिटैच होने से आती है, एक है प्यार की शक्ति जो हमारे संबंध संपर्क हमारे खुद के लिए टॉलरेंस का रूप लेती है, सहन शक्ति का रूप लेती है. एक होती है समाने की शक्ति जो हम खुद के अलग अलग विचार को समा करके समझ करके हम चल सकते हैं, औरों के विचार को भी समा सकते हैं. फिर है समेटने की शक्ति, पैक अप लेट गो मूव ऑन. हम काफी देशों में चक्कर लगाते हैं और एक मौका आया था जो हमको ग्रीस जाना पड़ा. 2 साल से वहां हमारी एक कोऑर्डिनेटिंग टीम है तो उसको सपोर्ट किया था. और उसमें एक बहन मिली मुझे, शी वाज 80 इयर्स ओल्ड, उसका नाम था हरा. तो हरा मींस चीयरफुल, हर्षित मुख वाली. तो मैंने इसको पूछा, आपकी उम्र 80 इयर्स की है, आप इतना चीयरफुल, आपकी सीक्रेट क्या है, इतना हर्षित मुख रहने की सीक्रेट क्या है? तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई कि आई ऑलवेज लेट गो एंड मूव ऑन. कहती है बहुत सारी बातें आती है सामने. आपको पता है ग्रीक्स आर यूज्ड टू ड्रामा, हर एक बात छोटी चीज को बड़ी कर देंगे. दे एक्चुअली इवन हैव अ सिटी कॉल्ड ड्रामा इन द नॉर्थ. सो ये कल्चर है इनका बड़ी बात बनाने का. कहती है बात तो बहुत छोटी होती है, बड़े बना देते हैं. बहुत सारी ऐसी बातें आती है दिन में, लेकिन बात आती है और जाती है और मुझे समझने का टाइम भी नहीं मिला है और चली गई, तो मैं क्यों बैठ करके उस बात को समझूं? इट्स कम, इट्स गॉन, सो व्हाई शुड आई स्पेंड टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉन? दिस इज विजडम. समेटने की शक्ति पैदा होती है जब हम प्रेजेंट समय में रहते हैं. जो बात बीतती है उसको लेट गो, हो गई. फिर निर्णय शक्ति. निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, दोनों बहुत डीप कनेक्टेड है. आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं खुद की लाइफ के लिए, तो आपकी लाइफ जैसे पॉज बटन पे है. सोच करते ही रहेंगे, मुझे ये करना है, करना है, करना है, लेकिन आत्मा ने डिसीजन नहीं लिया है किस डायरेक्शन में जाना है. कई कई लोग मुझे पूछते हैं, इज देयर सच अ थिंग इज अ राइट डिसीजन? What is a right decision? मेरे लिए जो right decision है वो आपके लिए right decision होगा? होगा? So what is a right decision? Decision सिर्फ एक action है, लेकिन मुझे उस action के लेने के समय मुझे अपने consciousness को right रखना है. क्योंकि यू कैन चेंज योर डिसीजन. आपको राइट जाना है तो आप राइट जा सकते हो, फिर आपको रियलाइज है कि ये रास्ता ठीक नहीं है तो आप लेफ्ट जा सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देकर के लेफ्ट जा सकते हैं, फिर आपको और आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हो. यू कैन चेंज योर एक्शन, बट टू सस्टेन एक्शन कॉन्शियसनेस हैज टू बी राइट. मैंने क्यों इस डिसीजन को लिया है, इसमें आती है निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति. क्योंकि काफी हमारे जो चॉइसेस है हमारे लाइफ में, आधे बेनेवलेंट चॉइसेस, माना खुद के लिए कल्याणकारी और औरों के लिए भी कल्याणकारी. कि ये मैं अभी स्टेप जो ले रही हूं इससे फायदा मिलेगा, ना कि जस्ट फिजिकल लेवल पे, लेकिन मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे. तो सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म शक्ति को यूज करके हमारी परखने की शक्ति भी सूक्ष्म होती है. फिर आती है सामना करने की शक्ति. चलो बाहर की बातें तो छोड़ो, अंदर कितना सामना करना पड़ता है, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर स्टॉर्म्स, बहुत सारी बातें होती है अंदर. तो सामना करने की शक्ति इज लिंक्ड टू सत्यता, आत्मा में जो सत्यता का गुण है उसको एक्टिवेट करेंगे तो सामना करने की शक्ति आती है. सो दैट वी कैन फेस चैलेंजेस विदाउट रिएक्टिंग. मैं आपको बताऊं, रिएक्शन इज अ साइन ऑफ डिसऑनेस्टी. कल्चर बन गया है हमारा, एक धर्म बन गया है हर बात में रिएक्ट करना. रिएक्शन करना कोई ज्ञान नहीं है, इट्स अ लेजी रिस्पॉन्स टू समथिंग. इट मीन्स कि मैंने खुद की सत्यता को एक्टिवेट नहीं किया है एंड आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ. मैं कुछ छोटी सी चीज अंदर से हुई है उसको प्रोजेक्ट कर रही हूं, मेरे में दुख कुछ भरा है, मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ है, मैं बाहर फेंक रही हूं रिएक्शन द्वारा, और फिर मैं अपने आप को राइट समझती हूं. इतना तक मनुष्य का अभिमान पहुंचा है. एंड सो कल्चरली हम बहुत लेजी बन गए, रिएक्टिव कल्चर है हमारा, और हम समझते हैं कि ये राइट है. रॉयल नहीं है ये, हमारा स्वमान जो है ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता है. फिर आती है सहयोग देने की शक्ति. सहयोगी बनना, चलो समय तो देना है, ध्यान भी देना है, लेकिन सहयोग का सूक्ष्म डेफिनेशन है कि आप अपनी गुणों का सहयोग दो. चलो हम यहां बैठे हैं, बाहर रूप से दिखाई देगा कि हम लेक्चर कर रहे हैं, राइट? एक्सटर्नल फॉर्म इज दैट. इंटरनल फॉर्म क्या है? कि हम अपनी क्लैरिटी, जो अंदर की गुण है, क्लैरिटी की गुण है, वो उसका मैं आप सहयोग दे रही हूं, शेयर कर रही हूं. तो हर एक सिचुएशन को एक क्वालिटी की जरूरत होती है हमारे से, जो भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, एक गुण की आवश्यकता उस सिचुएशन को जरूरी है हमारे से, इसीलिए हमारे पास वो सिचुएशन आई है. अभी मैं इस बात को पकड़ सकती हूं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या देना है, कौन सा सहयोग, कौन सा गुण का सहयोग देना है. चलो मैं बाहर रूप से एट द लेवल ऑफ सेवा सर्विस, मैं समझती हूं मैंने बहुत अच्छा लेक्चर किया, सभी को बहुत अच्छा लगा, अच्छा लेक्चर, इसका अभिमान आता है. कहते हैं ना भारत में, अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है, इट्स अ फैक्ट. लेकिन जब हम हमारी सूक्ष्मता में रहते हैं तो ह्यूमिलिटी से, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ अपना गुण, अपने गुण से सहयोगी बने, बस अपनी वैल्यू को जान करके हम सहयोगी बने, तो हम यहां बैठ करके कोई गुरु बनने का लक्ष्य नहीं है, हम सहयोगी बने. सहयोग की जब वो एक्यूरेट भावना रहती है ना, तो एक समानता रहती है, इक्वालिटी रहती है हमारे संबंध में. वेरी डीप ये बात, बिकॉज द बिगेस्ट इश्यू विथ पावर या हायरार्की के हिसाब से, कि कोई मेरे से बड़ा है और मैं किसी से छोटी हूं, इट्स अ बिग थिंग हियर. मोस्ट ईस्टर्न कंट्रीज इट्स लाइक दिस. तो ये सब जो हायरार्किकल पावर्स है, जो हमको एक प्रकार से एक विक्टिम के हिसाब से बना दिया है संबंध में, या ओप्रेसर बना दिया है, ये जो गेम्स हमारे संबंध में चलते हैं वो ना हमको स्वमान में रहने देती है, ना हम किसी को प्रेरणा दे सकते हैं स्वमान में रहने के लिए। तो पहले तो खुद की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैंने अपने आप को क्या समझा है। चलो आप आए हो यहां पे राजयोग सीखने के लिए, लेकिन जो आदतें हैं विक्टिम बनने की आदतें, समझो हमारे संकल्प में मैं नालायक हूं, नालायक शब्द भी नहीं, मैं अनवर्दी हूं, आई कांट डू इट। इन संकल्पों का भी त्याग चाहिए, क्योंकि पावर एक नेचुरल चीज है। देखो परमात्मा एक सुप्रीम पेरेंट है आत्मा की, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट इट्स अ फैक्ट। जब भी बेबी का जन्म होता है तो बेबी जब इस दुनिया में पैदा होती है तो वो बेबी डाउट लेकर के पैदा होती है क्या? उस बेबी को फुल ट्रस्ट, विश्वास होता है कि आई एम लव्ड एंड आई बिलोंग। वो उस एनर्जी लेके पैदा होती है। वो अनादि संबंध ना हो तो वो बेबी और वो आत्मा, छोटी सी आत्मा छोटी सी शरीर में, वो उस एनर्जी से पैदा ना हो। तो ये एक नेचुरल यूनिवर्सल लॉ है कि आत्मा बिलोंग्स टू परमात्मा, परमात्मा बिलोंग्स टू आत्मा। और हमको वो बिलोंगिंग की फीलिंग जन्म से होती है, लेकिन ऑन द वे वो फीलिंग करप्ट हो जाती है। क्यों? जब ये टीनेज इयर्स आते हैं, छोटेपन से बड़े बन जाते, क्या होता है? थोड़ा कल्चर का, फैमिली का सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं ना। सेल्फ कॉन्शियस माना ये आपकी खानदान है, आपको सिखाया जाता है ये आपकी खानदान है, ये आपकी कल्चर है, कल्चर के ये रूल्स है। आप इस गांव से आए हो, आप इस विलेज से आए हो, लॉट्स ऑफ कंडीशंस। फिर माय आता है, ये माय है, ये माय है। तो ये जो बैरियर्स बनते हैं, वो जो नेचुरल बिलोंगिंग, अपनापन का जो फ्लो है, उसमें एक प्रकार का बैरियर आ जाता है। जैसे एक सूक्ष्म, हम एक प्रिजन बना रहे हैं हमारे लिए, और उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। वो है बस आर्टिफिशियल लिमिटेड आइडेंटिटी। आपका एक वस्त्र है इस दुनिया में, so that people can place you। चलो आप मुझे देख रहे हो, Indian bodied, come from Africa, meditation teacher, ये क्या मेरा पूरा identity है? 10%। लेकिन हमने 90% हमारा जीवन 10% के identity में invest किया है। तो शक्ति माना वो अंदर की आत्मिक शक्ति को realize करके वहां इन्वेस्टमेंट करना है। इट्स लाइक कमिंग बैक टू दैट स्टेज ऑफ बीइंग अ चाइल्ड अगेन। एक पैराडॉक्स है कि आपको स्पिरिचुअल पावर अपनाना है, देन द सेकंड मेथड इज यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड अगेन, अ चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम। लॉ है वो इनोसेंस, वो प्यूरिटी, वो सॉफ्टनेस। फिर आपकी पावर जब इस देह द्वारा यूज करेंगे, करप्ट नहीं होंगे। जब भी वो चाइल्डहुड की फीलिंग नहीं होती है ना, तो अभिमान से काम लेते हैं, क्योंकि हम खुद को अपना बड़े समझते हैं ना। अनुभव कितना है लाइफ का, काफी छोटी छोटी बातों में हम अपने को बड़ा समझते हैं। चलो अनुभव है, सो व्हाट, चलो टैलेंट्स है, सो व्हाट, स्किल्स है, सो व्हाट। ये आपके जो टैलेंट्स, स्किल्स, अनुभव है, आपके पास उसकी शक्ति आपकी मन और बुद्धि को स्थिरित कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। तो आप इतना महत्व क्यों दे रहे हो इन बातों को? मैं क्यों इसको थोड़ा एम्फसाइज कर रही हूं? क्योंकि पावर जो शब्द है वो इस कारण से करप्ट होता है, क्योंकि हमने इन बातों में अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन ज्यादा रखा है। हम कौन है? हमारी बड़ी दादी जी है, 103 अभी 104 की उम्र होने वाली है। चलो पेपर पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। दादी कहती है ये तो रोल पेपर पे लिखा है, लेकिन हमारा पार्ट क्या है? विश्व कल्याणकारी, एक मां बनना, क्वालिटी की बात है ना। तो हमारी जो पर्पस है लाइफ की, वो हमारी क्वालिटीज से बनती है। इसीलिए क्वालिटीज के साथ कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। ये मेडिटेशन के अभ्यास से ही होता है, क्योंकि किस चीज जो बहुत समय से दबी हुई होती है उसको आप बाहर निकालना चाहते हो, उसको थोड़ा ध्यान चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे उस चीज से आपको एनर्जी मिलेंगी। आप एनर्जी एक्सचेंज शुरू, अटैचमेंट है क्या? वो ही है ना। आप कोई व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो गए हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आप दोनों के बीच में। वो अपसेट होगा, आप अपसेट होंगे, आपको इफेक्ट आएगा। वो खुश होगा, आप खुश होंगे। जैसा आप, बिल्कुल यू आर कंट्रोल्ड बाय द एनर्जी फ्लो बिटवीन यू। तो हम बिटवीन टू पीपल इतना गहरा संबंध रख सकते हैं, तो हम परमात्मा के साथ अटैच्ड क्यों नहीं हो सकते हैं? ये ध्यान की बात है। और प्रैक्टिकल लेवल में देखा जाए कि टू रिसीव पावर कुछ बुद्धि का प्रेपरेशन चाहिए। कहते हैं ना, सोने का बर्तन चाहिए शेरनी का दूध के लिए। परमात्मा की शक्ति एक बहुत प्योर शक्ति है, वो एक शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। और इतनी प्योर है ये शक्ति कि ये बुद्धि रूपी बर्तन एक सेकंड की भी शक्ति लेकर के तृप्त हो सकती है, एक बूंद भी लेकर के तृप्त हो सकती है। तो मेरी कैपेसिटी को बढ़ानी है इस पावर को कॉन्स्टेंटली रिसीव करने के लिए। आप आए हैं, वातावरण से आपको मदद मिल रही है, शांति का वातावरण है, तो फिर आपको लगता है यहां बहुत शांति है, और फिर आप उस तरफ ध्यान रख सकते हैं। तो इन द सेम वे परमात्मा की जो ये शक्ति है, अंदर की किस प्रकार की प्रेपरेशन चाहिए उस शक्ति को रिसीव करने के लिए? हमारे अंदर हमारे मन बुद्धि दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन ठीक सहयोग एक दो को नहीं देते हैं। मन की भावना एक होती है, बुद्धि कुछ और करती है। चलो आपकी मन की भावना है कि मैं यहां बैठ करके शांति का अनुभूति करूं, फिर बुद्धि क्या करती है, इधर उधर भटकती है। तो अंदर की जो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्पेशली थॉट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको ठीक करना है। बिकॉज हमारे जो संकल्प और थॉट्स है वो हमारी मन की भावना को बदलती है और बुद्धि की कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाती है या कम करती है। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है। अभी आप देखो, हम थॉट लेवल पर जाएंगे, आपका थॉट मैनेजमेंट कितना है। चलो आप अपने लाइफ में पैसे का मैनेजमेंट करते हो, आपका टाइम टेबल एक्शंस का मैनेजमेंट करते हो, आपने खुद की मन बुद्धि का टाइम टेबल रखा है, ध्यान का अटेंशन, संकल्प का अटेंशन। क्योंकि इस लेवल पे मैनेजमेंट होगा तभी आप भगवान की शक्ति को ग्रहण कर सकेंगे, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग फॉर पावर एंड दैट विल ऑलवेज मेक यू अ विक्टिम। इट्स वेरी सटल। सो थॉट्स क्या है और किस प्रकार के हैं? चार कैटेगरीज है संकल्पों की। एक तो आप तो बहुत अच्छी तरह से अनुभवी हो एक कैटेगरी का, वो कौन सा कैटेगरी होगा? वेस्ट। दूसरा नेगेटिव। वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस कैटेगरी, राइट? चलो आप सब अनुभवी है तो मुझे एक नेगेटिव थॉट का एग्जाम्पल दो। व्हाट इज अ नेगेटिव थॉट? यू हैव टू स्पीक अप। ओके, नेगेटिव थॉट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होंगी। उसको चांस भी नहीं दिया है और दबा दिया है। और ओके, वरी फॉर द फ्यूचर आई विल पुट इन द वेस्ट कैटेगरी, आई टेल यू व्हाई लेटर। बट नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी, ऐसे एनर्जी गिरा देती है ना, ब्रिंग्स यू डाउन। नेगेटिव थॉट एग्जांपल, मुझे गुस्सा आता है। थैंक यू। और नेगेटिव थॉट, आप नहीं करने देते दूसरे प्रति, गलत सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, या दैट्स वन ऑफ द आउट प्रोडक्ट्स ऑफ इट, ऑल्सो लिंक टू वेस्ट। और क्या? ईर्ष्या वाले संकल्प, लोभी संकल्प, मुझे ये चाहिए कैसे भी करके मैं ये लूंगी, बदला लेने का संकल्प, राइट? नेगेटिविटी में तो इट्स ऑलमोस्ट अ हैबिट इन वन सेंस, दोस थॉट्स। और आप देखा जाए तो ये संकल्प कभी इंडिविजुअली नहीं घूमते हैं, ग्रुप में घूमते हैं। तो आप एक को एंट्री देंगे ना, उसके साथ हजार आएंगे। चलो वन मोमेंट आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, आपने एक को भी एंट्री देने दिया तो एक सुनामी आ जाएगा आपके मन में और एक सेकंड में आपकी मानसिक स्थिति बदलेंगे। इट डजंट टेक लॉन्ग, वन सेकंड। एक गैप होता है, पता है, इट्स वेरी वेरी सटल, कि जब रिएक्शन से पहले एक स्प्लिट सेकंड का गैप होता है जिसमें आत्मा को पता है कि ये संकल्प ठीक नहीं है, फिर भी कर लेती है, राइट? आप सभी को अनुभव है, जब भी आप किसको क्रिटिसाइज करते हो, ब्लेम करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो क्या करते हो? अंदर से रियली आप ऑनेस्टी से देखेंगे तो आपको पता है कि दिस इज नॉट द फुल ट्रूथ, लेकिन ये चक्कर एक बारी डोमिनो गिरा, यू नो डोमिनोज का गेम होता है, एक बारी डोमिनो गिरा तो वो तो गिरते ही रहेगा। इसको कहते हैं इंग्लिश में मर्फीज लॉ। What has gone wrong has to go wrong, will go wrong, must go wrong. इसीलिए आप एक भी नेगेटिव संकल्प को आने देंगे ना तो आपका डोमिनो उल्टा पड़ा, वो फिर होगा ही ऐसे, क्योंकि आपने रचा। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी कॉन्शियस पावर बढ़ती है तो हम ब्रेक लगा सकते हैं कि मुझे इस रबिश को अपने मन में नई एंट्री देना है। ये मेडिटेशन का अभ्यास ये स्ट्रेंथन करता है, इस गैप को बढ़ाता है। तो इसलिए नेगेटिव संकल्पों को तो एक नो एंट्री साइन चाहिए, दैट्स इट। नो नीड फॉर निगोशिएशन, नो नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी चीज है कि उसका कोई सलूशन है ही नहीं, वो एक एनर्जी है, आपको हिला देंगे, किस तरह से आपको यूज करेंगे, उसको सिर्फ नो एंट्री साइन, यू हैव फुल परमिशन, नो एंट्री साइन। फिर आती है दूसरी कैटेगरी वेस्ट की। देखो हर एक संकल्प की कैटेगरी का एक कॉस्ट होता है, आप इस संकल्प को अलाउ करेंगे तो आपका शारीरिक कॉस्ट होता है, एंड द कॉस्ट फॉर नेगेटिव थिंकिंग इज ड्रेनेज, एनर्जी ड्रेनेज। जब भी आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं रहेगी। लिटरली नेगेटिव थिंकिंग टेक्स ऑल एनर्जी फ्रॉम यू, कि आपके लाइफ के गोल्स है, आपके लाइफ के एम्बिशंस है, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी एनर्जी खत्म कर लेती है। फिर आती है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स का ये कॉस्ट है बुद्धि पे कि इट विल मेक यू लूज फोकस। चलो आपने कुछ कार्य शुरू किया, प्रोजेक्ट शुरू किया, और आप बहुत, आपका एम था कि करना है, दृढ़ता भी थी, लेकिन जब ज्यादा वेस्टेज जाएंगी तो वो दृढ़ता कम होती जाएंगी, वो फोकस कम होता जाएगा, और जब आपको कंसंट्रेट करना है तो कंसंट्रेशन का स्पैन भी कम हो जाता है। ये वेस्टेज का कॉस्ट। और वेस्टेज है क्या? वरी एक वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि कुछ बात हुई नहीं है और हम उसका इमेजिनेशन चलाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, दिस इज लाइक गोइंग टू द मूवीज। वो अभी बात हुई नहीं है, उसका कोई सिग्नल आया भी नहीं है, लेकिन हमने मन में ऑलरेडी इसका फिल्म क्रिएट कर लिया, और इस फिल्म को देख करके हम खुद अपने आप को मुंझा देते हैं और डरा देते हैं। बेसमझ की बात है। वेस्टेज किस और बात में होती है? समझो आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कार में जाते हो, विदेश में तो ये रिवाज है, मेट्रो में जाते हो, ट्यूब में जाते हैं हम, तो आप ट्यूब में बैठ करके क्या करते हो? बुद्धि क्या करती है? चलो आपको कुछ पढ़ने का होता है तो थोड़े समय कंसंट्रेशन रहता है, फिर बाहर औरों को देखते हैं ना, किसी का हैंडबैग ये कलर का है, किसी की हेयर स्टाइल ये कलर की है, किसी के कपड़े ये कलर के हैं, इसका ड्रेस ये कलर का है, बुद्धि चलती है ना थोड़ा, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी मीन्स बेचारे मन को कुछ प्रोग्राम नहीं मिला है तो फिर औरों के ऊपर औरों को उसका प्रोग्राम बन जाता है। यू बिकम माई प्रोग्रामिंग। जैसे वंडरिंग माइंड कहेंगे ना, एक छोटा बच्चा होता है, आप बस बच्चे को ध्यान नहीं देंगे, उसको बस जहां वो जाना चाहता है गंदी गंदगी में चला जाएगा और फिर वापस आएगा, ये क्या है? सो वेस्टेज, वी वेस्ट आवर मेंटल एनर्जी इन अननेसेसरी थिंग्स. तो प्रश्न पूछना चाहिए खुद को, जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात है, मुझे इसमें कौन सी नेसेसरी बात, जरूरी बात मेरे लिए है, इतना ही लेना है, बाकी छोड़ दो. एवरीथिंग एल्स इज नॉन ऑफ योर बिजनेस. हमारे इंग्लिश में कहावत है, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नॉन ऑफ योर बिजनेस. नॉन ऑफ योर बिजनेस. लेकिन हमारा कल्चर में जो कैसे और हमको देखते हैं और कैसे और हमारे विचार करते हैं, हमने खुद ये कल्चर बना दिया है, हमारे स्वमान उस आधारित से ही चलता है. वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द ओपिनियन एंड विजन ऑफ अदर्स, बट एक्चुअल फैक्ट इट्स नन ऑफ योर बिजनेस व्हाट समबडी थिंक्स अबाउट यू. वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका बिजनेस है. आपका बिजनेस क्या है? व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू थिंक अबाउट अदर्स. That's your business. So, necessity, being economical with our thoughts. You know, even with food, भोजन के समय आप जाओ भोजन लेने के लिए, जो जरूरी है पेट के लिए वो ले लो. पूछो आपके सामने, ये जरूरी है? नहीं जरूरी है तो नहीं ले लो. It's such a simple question. Is this necessary? बस ये filter बन गया आपके लिए, wastage को control करने के लिए. Control नहीं, लेकिन wastage का account को खत्म करना है. क्योंकि जहां wastage है वहां self love पैदा नहीं होता. You cannot value yourself. You cannot see your own value. और जब खुद की वैल्यू की महसूसता नहीं होती है तो वो खुद के लिए प्यार भी नहीं रहता है, नहीं रहता है खुद के लिए प्यार. तो वेस्टेज डिस्ट्रॉयज द पावर टू गिव एंड रिसीव लव. फिर तीसरी कैटेगरी, साधारण संकल्प. साधारण संकल्प कौन से हैं? कहते हैं ना इंग्लिश में ordinary thoughts. ये है संकल्प linked to your roles and responsibilities. आपका जो भी रोल है, माँ का रोल है, बिजनेसमैन का रोल है, वो रोल है, वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कनेक्शन में संकल्प तो चलेंगे ना. चलो जितने संकल्प चाहिए वो रोल के लिए उतना ही करो, नो मोर. इफ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लिस्ट बना दो. लेकिन यहां रिवाइज नहीं करते, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. क्योंकि इतना सोच करके व्हाट हैपेंस इवन न्यूरोलॉजिकली इज ब्रेन थिंक्स यू हैव डन इट. न्यूरोसाइंस में कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ बात पे सोच करता है कि मुझे ये करना है करना है करना है, तो जैसे ब्रेन को इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एक्ट और परसीव्ड एक्ट. तो ब्रेन समझता है कि मैंने कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में वो बात नहीं होती है. इसीलिए साधारण संकल्प करना है, लेकिन जो संकल्प उठता है उसको करके पूरा करके फिर दूसरा करना है. आप इतना ही संकल्प रचो जो आपको वो समय में आपके पास वो करने की शक्ति है. ज्यादा नहीं उठाओ, टेक इट मोमेंट बाय मोमेंट. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उस समय आप ज्यादा उठाएंगे भारीपन. Just take the thought that I can do now. Then next moment, wo sankalp karo that I can do now. What can I do now? That's it. ये फिर आपके साधारण संकल्प पे कंट्रोल रहता है, क्योंकि too many ordinary thoughts they create heaviness. और इंग्लिश में कहते हैं ना, वो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन को क्या कहेंगे हिंदी में, नॉट रियली लेजीनेस, आलस्य नहीं कहेंगे, लेकिन किस चीज की आप डिले करते रहेंगे, यू नो, एक प्रकार की एक आलस्य आ जाती है जब हैवीनेस आती है. अरे चलो छोड़ दो ना, कर लिया ने, हो जाएगा, देखेंगे. दिस इज रिजल्ट ऑफ टू मैनी साधारण संकल्प. एक बोझा बन जाता है. कितने सारे संकल्प किए हैं लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इतना ही किया है. और इसका भी कॉस्ट होता है शरीर पे. फिर चौथी कैटेगरी होती है शुद्ध और शुभ संकल्प. आप हम सभी के पास ये अनुभव है, जब भी आपने खुद के लिए या कोई व्यक्ति के लिए एक गुड विश रखा है, आपके अनुभव में ये एक्सपीरियंस खोज करो. उस समय में जब गुड विश अंदर से निकला तो कितनी संतुष्टता की फीलिंग पैदा हुई थी उस समय. यू फेल्ट गुड इनसाइड, नहीं? और वो एक संकल्प से इतनी ताकत है प्योर थॉट में कि एक संकल्प से खुद का दिल भरपूर होता है. अभी आप देखो, सारे दिन में आपने खुद के लिए औरों प्रति के लिए कितने गुड विशेष रखे हैं. इसलिए संतुष्टता की कमी होती है ना, क्योंकि संतुष्टता एक अंदर की एनर्जी होती है, एक मानसिक सेटिस्फेक्शन होती है. तो मनसा एक शुद्ध संकल्प पैदा करेंगी तब सेटिस्फाई होंगी. ये सूक्ष्म बात है. अभी आप ये चार कैटेगरीज के संकल्प देखो और खुद की ऑडिट करो कि मेरे मनसा किस कैटेगरी में ज्यादा परसेंटेज है और किस कैटेगरी में कमी है. फिर आप खुद की रियलाइजेशन कर पाएंगे कि मैं किस स्टेज पर पहुंचा हूं. तो जब हम ये मैनेजमेंट को क्लियर अप करेंगे और पॉजिटिव शुद्ध संकल्प की कैटेगरी अकाउंट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम शक्ति, बुद्धि, बर्पण, बुद्धि का जो बर्तन है वो सत्व प्रधान हो जाएगा. सत्व प्रधान होने के आप बस परमात्मा का एक संकल्प करके आपको तुरंत एनर्जी मिलेंगी. तुरंत वो चैनल क्लीन है, बर्तन क्लीन है. तो ये है तरीका, पावर लेने का तरीका. Requires responsibility internally. आपने तीन दिन की अभी भर्ती की है. अभी जो भी आपको प्रेरणा मिली है, आपने जो absorb किया है, अभी उस realization को लेकर के, energy को लेकर के अंदर की management system को ठीक करो. अपने आप को सीधा ट्रैक पे ले आओ, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो. हम आपके लिए ये नहीं कर सकते. हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन चलना है किसको? आपको ही चलना है ना. और आपके चलने से ही आपको एम्पावरमेंट मिलेगी. So it's a joy. Spiritual path is path for learning, enjoying, empowering, experimenting. Experiment, samjho. Take it lightly. Chalo, meditation ka ye ek bahut badi benefit hai ki gives you the ability to observe yourself. आप जितना डिटैचमेंट का अभ्यास करेंगे ना, उतना आप देख सकेंगे खुद की मन में क्या आ रहा है एक ऑब्जर्वर के रूप से. देन यू कैन लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ, टेक योरसेल्फ लाइटली. चलो ये संकल्प आ रहे का बड़ी बात नहीं है. दिस इज व्हाई दिस प्रैक्टिस इज सो इंपॉर्टेंट. अभी 8 बज गए हैं और मैं समझती हूं आपके कोई विचार या प्रश्न है तो 5 मिनट है, आपको कुछ पूछना है या कुछ रियलाइजेशन आया है वो आप शेयर कर सकते हैं. जी सभी ने प्रश्न सुना. जब भी बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस आए हैं आपके जीवन में पास्ट में, तो उससे नेगेटिव संकल्प तो पैदा होते हैं, तो उससे फ्री कैसे होना. मैं थोड़ा आपका प्रश्न का थोड़ा एक्यूरेट बनाती हूँ. सिचुएशंस तो होंगे हमारे जीवन में नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि वो पोलर एनर्जी है. ह्यूमैनिटी, ह्यूमन एनर्जी ड्यूअलिटी, दुविधा की एनर्जी है. कभी कभी खुश, कभी गम, कभी गम, कभी प्रेज, कभी डेफिमेशन, कभी विक्टोरी, कभी डिफीट. ये एक नेचुरल एनर्जी का फ्लो है, ठीक है. लेकिन हमने जब भी बहुत समय एक नेगेटिव सिचुएशंस में पास किया है तो क्या होता है, हमारे में दुख भरता है. यू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लोली. तो वो दुख, वो नेगेटिव सिचुएशन का जो प्रभाव है, औरों के संकल्प जो आए हैं आपके प्रति, वो दुख नेगेटिविटी को रिसाइकल करता है. इसीलिए नेगेटिविटी से फ्री होना है तो दुख को मिटाना है. गेट माई पॉइंट? दुख को मिटाने के लिए, चलो हम इंग्लिश में कहते हैं हीलिंग, नीड टाइम टू हील. ये आती है आत्मा परमात्मा के संबंध में. जो आप रियली इतना आप एक बच्चा, छोटा बच्चा बन जाओ और परमात्म शक्ति आप अपने मन में लेकर के आओ, तो वो शक्ति एक ब्लॉटिंग पेपर बन जाती है. पता है जब इंक, आप इंक जब पेपर में आता है तो ब्लॉटिंग पेपर डालते हो ना इंक को हटाने के लिए. परमात्मा की शक्ति ऐसा काम करती है. पूरा आत्मा में जो दुख दर्द होता है उसको ब्लॉट आउट कर लेती है. इसलिए उस संबंध को टाइम देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. यू नीड टाइम आउट विथ योर पेरेंट. चूस लेगा, गारंटी है, लेकिन ध्यान चाहिए. क्या है, कभी कभी इतना दुख भरा हुआ है आत्मा में कि हम फेस नहीं कर पाते, खुद को फेस नहीं कर पाते. जैसे हमको डिस्ट्रेस बना देती है ना, और फिर हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के स्ट्रेटजीज बना देते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इस दुख से हमको डिस्ट्रैक्टेड रहना है. तो हम बाहर मुक्ता में ज्यादा आ जाते हैं. अंडरस्टैंड? आप यहां आए हो, आप मेडिटेशन सीख रहे हो, आप ये संबंध की विधि सीख रहे हो, द the best thing for healing. इसको आप सुबह के टाइम आप अपने आप को टाइम देंगे आधा घंटा 30-40 मिनट्स इज नेसेसरी एवरी मॉर्निंग कंपल्सरी. मन को कम से कम 10-15 मिनट चाहिए सेटल होने में, फिर कनेक्शन बनाने में, फिर पावर लेने में टाइम लगता है. और जब आप बहुत साल के अनुभवी बनेंगे तो एक सेकंड में होगा. यू अंडरस्टैंड? लेकिन शुरुआत में आपको खुद को परमात्मा को टाइम देना होगा. इसलिए मैं ऑलवेज एडवाइस देती हूं, द मोमेंट यू ओपन योर आईज डोंट टच योर मोबाइल फोन. इट्स द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन. गुड मॉर्निंग सोल के बिना, गुड मॉर्निंग गॉड के बिना, गुड मॉर्निंग मोबाइल फोन होता है. और तुरंत आपकी मन की एनर्जी 10 बातों में एंगेज हो गई, प्लग इन हो गई, फिर वही चलती है बात. द कांट फोकस इन द डे. शक्ति नहीं ले पाएंगे क्योंकि कर्म फिलॉसफी के आधार से आपने पहले ये छेड़ा. कर्म फिलॉसफी के आधार से आप पहले भगवान को याद करेंगे, ही इज रिस्पॉन्सिबल. अंडरस्टैंड? वेरी सटल. इसीलिए सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक वीक के लिए घर जाकर के इस बात को ट्राई करो, आप देखो सारा दिन का मूड कांस्टेंट रहेगा. ये मदद करता है. और शाम के समय वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शाम के समय क्या होता है, जो सारे दिन की जो सीनियरिया होती है ना, इमेजेस, जैसे मन एक स्नैपशॉट लेता है, चलो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पूरी एक फोटो एल्बम भरी हुई है. यहां पे स्लाइड शो आपने देखा होगा. अभी स्लाइड शो जब एक इमेज एक के ऊपर होता है तो कैसा लगता है? कंफ्यूजिंग लगता है ना. तो बेचारा मन की स्थिति ऐसी होती है एट द एंड ऑफ द डे. उसको क्लियर आउट करना है. ऐसी स्थिति में कभी नहीं सोना है. हम क्या करते हैं, काम से आते हैं सिर्फ टीवी ऑन करते हैं, राइट? टीवी ऑन तो और ज्यादा इमेजेस आए, फिर मन इतना भारी हो जाता है, फिर हम नींद कर लेते हैं. और वो नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती है. आप ड्रेन्ड आउट बन करके फिर आप नींद पे जा रहे हो. तो नींद के समय क्या होता है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी बातें भरी हुई है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. आपका जो सब कॉन्शियस है वो पूरा जो दिन भर का इंफॉर्मेशन है जो आपने क्लियर आउट नहीं किया है वो उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है. इसलिए ड्रीम्स आते हैं, सपना आते हैं, और वो भी बुरे बुरे सपने आते हैं. और फिर नेक्स्ट डे आप उठते हैं तो आपको रिफ्रेश फीलिंग नहीं आती है, राइट? फिर वही एनर्जी से उठते हैं, वो एनर्जी दिन भर में एक साइकिल बन जाता है, डिप्रेशन का साइकिल शुरू हो जाता है. हमारी दादी ने हमको ये बात पक्की कराई है कि सोने के पहले थोड़ा योग करो, युक्ति रचो, थोड़ा लेटर लिखो भगवान को, एक योग करके मन को क्लीन क्लियर बना करके सो जाओ. कभी थकान में नहीं सो, क्योंकि वो और थकान पैदा करती है. ओके, एक और प्रश्न बताइए. आप सभी ने प्रश्न सुना, हम यहां हैं फूलों के बगीचे में बैठते हैं, अच्छी खुशबू आती है, अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब अब सुनामी के बीच में होता है तो उसका क्या? अच्छा, आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव. आप यहां जो भी सीख रहे हो, आप ये जो प्रेरणाएं शिक्षाएं से आप खुद की लाइफस्टाइल का रिव्यू कर रहे हो, क्योंकि सुनामी आई है क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल का कोई वैल्यू नहीं था, कोई प्रिंसिपल्स नहीं था, तो आप उस लाइफस्टाइल से आए हो यहां पे सीखने के लिए। अभी ये सिखामन अंदर ग्रहण करके अभी विचार करना है, मुझे किस प्रकार की लाइफस्टाइल से जीना है, देन यू कैन मैनेज थिंग्स। इफ यू डोंट रिक्रिएट द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ, यू नो राजयोग में चार पिलर्स है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योर डे हैज टू हैव फोर प्रिंसिपल्स, सम टाइम फॉर स्टडी, सम टाइम फॉर योग मेडिटेशन, सम टाइम फॉर धारणा एंड सम टाइम फॉर सेवा। ये चार प्रिंसिपल्स आप अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी अंदर की एनर्जी ठीक रहेंगी, देन यू कैन कोप अप विथ एनीथिंग। क्योंकि यू बाहर की दुनिया, अभी वी आर इन द विंटर ऑफ ह्यूमैनिटी, जब ये सीजन बदलती है, रेनी सीजन आती है, तो आप बैठ करके ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि हम रेनी सीजन क्यों आई है, हम रेनी सीजन में क्या करें। ये नेचर की एक लॉ है और हमारे स्पिरिचुअलिटी में चक्कर के हिसाब से था एक समय सत्युग का, था एक समय त्रेता का, था एक समय द्वापर का, अभी है समय कलयुग का। ये एंट्रोपी की एक लॉ है, लेकिन इस युग में मुझे क्या करना है, मुझे किस क्वालिटी की लाइफस्टाइल बनानी है, यही फोकस है। डू गेट माय पॉइंट? दिस इज व्हाई यू कम हियर टू स्टडी, टू रिक्रिएट योर लाइफस्टाइल। यस, आप जाएंगे बाहर की दुनिया में, एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगे, क्योंकि वी हैव फेड अटैचमेंट्स, वी हैव बिल्ट अटैचमेंट्स, वी हैव बिल्ट ईगोस, लेकिन वी आर स्टार्टिंग अगेन, बड़ी बात नहीं है। मेन थिंग कि खुद की एनर्जी को एलिवेटेड रखना है, दैट्स इट। स्टार्ट योर डे विद गुड एनर्जी। When you start your day with good energy, you have a good mood. Then you can handle anything. You have this experience. But if you don't start your day with good energy, तो bad mood होता है और हर एक बात में चिड़चिड़ापन आती है, हर एक बात के effect आता है। तमो प्रधान कलयुग में इट्स अ जंगल ऑफ थॉर्न्स। हमारी दादी जी कहती थी, आप थॉर्न्स को मत ब्लेम करो, लेकिन खुद का पांव कहां जा रहा है वो देखो। तो इन एवरी सिचुएशन, जो भी आपको सामना करना पड़ता है, आपको अपनी सत्यता की शक्ति यूज करनी पड़ेगी, प्यार की शक्ति यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक लाइफस्टाइल बनानी है ताकि ये शक्तियां आपकी भरपूर रहे। आप मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो शक्ति कैसे पैदा होंगी? वो फिर शक्ति आपके संबंध संपर्क में यूज भी नहीं हो सकता है। फिर ये संकल्प आते, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों होता है, ये भी एक रिएक्शन है। तो आपको अभी ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एंड माय सजेशन इज बिफोर यू लीव यू टेक 1 आवर आउट और उसमें आप प्यार से अपने साथ बैठो और बोलो, अभी मुझे मैंने क्या समझा है, ये कॉलम बनाओ, मैंने क्या अनुभव किया है, एक दूसरा कॉलम बनाओ, और तीसरा अभी मुझे क्या करना है मुझे सेल्फ केयर के लिए, इस एनर्जी और रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तीसरा कॉलम प्रैक्टिकल। तो पहला कॉलम मैंने क्या समझा है, दूसरा कॉलम मैंने क्या अनुभव किया है, और तीसरा कॉलम मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा मैप बनाओ, फिर क्लैरिटी आएंगी। मैप के बिना आप बाहर जाएंगे नो पॉइंट। आपको अभी एक स्ट्रेटजी बनानी है खुद के लिए, दिस इज योर वर्क, क्योंकि आपको कस्टमाइज करना है ना आपके सिचुएशन के लिए. ओके, वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन. ओके, गॉट ऑफ अस प्लीज.
आपको जब मैंने सुना, नाउ आई अप्रिशिएट व्हाट एक्जेक्टली फॉर दे बॉन्ड. नाउ आई हैव हर्ड सो गुड इन माय लाइफ. जब लिसनिंग टू यू फॉर वन आवर हैज रियली यू नो सॉर्ट ऑफ गिवन मी अ पिक्चर व्हाट इज रिक्वायर्ड. हाउ टू कम फ्रॉम दैट यू नो की रेडी मस्ट बी कनेक्ट एंड दैट एनर्जी यू
हैव. प्रश्न था एनर्जी लेवल के, कि मेरे पास बहुत एनर्जी है, बहुत स्पीड है. तो आपका प्रश्न है कि उस स्पीड और एनर्जी को स्लो डाउन कैसे किया जाए, धैर्य. देखो, हम इसका प्रोसेस है इसके पीछे. हम जब शांति की शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, मैं एक आत्मा हूं, एक शांत चित आत्मा हूं. जस्ट फॉर वन सेकेंड गो इन देयर. इमीडिएटली वो शांति की शक्ति पूरा सिस्टम को सॉफ्ट बना देती है. यू गेट माई पॉइंट? वो जब सिस्टम सॉफ्ट बनती है, बोलने को भी सॉफ्टनेस आता है. सोच भी ज्यादा चलेंगे नहीं. ये शांति की अनुभूति को बढ़ाना है, क्योंकि ये एक पावर सोर्स है. तो आप जिस प्लग, जिस पावर सोर्स में डालेंगे, उस हिसाब से चलेगा. जब भी हमारी स्पीड जब चलती है ना, क्योंकि हमने पावर सोर्स हमारे स्किल्स और टैलेंट्स में डाला है पहले. यू गेट माई पॉइंट? दैट्स वाई इवन दो आई हैव नॉलेज, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव स्किल्स, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, मैं पहले ओम शांति का मोमेंट करती हूं, फिर मैं बुद्धि लगाती हूं. मैं पहले से बुद्धि कभी नहीं लगाती हूं, क्योंकि पहले से जल्दी बुद्धि लगाएंगी ना तो तुरंत राइट रॉन्ग से तत् 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 हो जाएगा, फिर एक्सीडेंट होगा. मुझे ये काम एक शक्ति को लेकर के करनी है, तब राइट बात अपने आप सिद्ध होंगी. यू गेट माई पॉइंट? तो इट्स लाइक यू हैव टू सस्पेंड योर इंटेलेक्ट बिफोर यू स्टार्ट अ टास्क. Don't activate your intellect very quickly. Stop. Really go into Om Shanti in that moment. Main Atma is sharir mein baith karke, shanti ki sthiti mein sthit ho karke, phir karya shuru kar rahi hu. Phir buddhi ek tool ban jata hai. You get my point? Tabhi ye control aati hai. और कंसिस्टेंसी रहती है. ओके, थैंक यू. आपके बहुत अच्छे प्रश्न थे, अच्छा चिट चैट भी हुआ. और मेरी बहुत शुभ भावना है कि आप जब यहां से जाएंगे तो आप ना कि नॉट जस्ट एक्सपीरियंस लाइट, but you will become light and go back. So that you can be the light for others. Om Shanti. Chalo, ek minute ka.